نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Amazed by الأسماء الحسنى. آج اس سیریز میں سے ہم اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام الحمید دیکھیں گے، اور یہ نام ہمارے کلچر میں بہت عام ہے، لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے حمد، محمد، حامد، اور اسی طرح سے مختلف فارم پہ یہ روٹ ورڈ ہمارے سامنے رہتا ہے. حمید فائل کا وزن ہے، اور آپ تو میرے بغیر کہے سمجھ جائیں گے کہ جب کوئی چیز اس وزن پہ آتی ہے یا اس ساؤنڈ پہ آتی ہے تو اس میں مستقل تسلسل کسی چیز کا متواتر ہونا، جیسے رحیم، شفیق اور اسی طرح سے کریم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمید ہیں، اسے کیا مراد ہے؟ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو الحمید سمجھ لیتے ہیں، اس کو پا لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہماری زندگی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانی چاہیے، یہی ہے ہمارا آج کا ٹاپک. اور اس کے اوپر جتنا زیادہ آپ غور کرتے جاتے ہیں نا، آپ کو اپنی زندگی میں خوبصورتیاں دکھتی ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں بس وقت کاٹتے ہیں، چلو جی اب جو ہیں وہ تو کریں، لیکن جتنا زیادہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کے رنگ میں رنگے جائیں گے، آپ اپنے مالک کی تعریفیں کرتے ہی جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی اپنی زندگی خوبصورت ہوتی ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا اپنا نام الحمید، تو حمد چھپی ہوئی ہے، اور قرآن پاک شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ ساری چیزیں بلا وجہ نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات کو اگر کوئی پوچھ لے کہ کیوں بنایا گیا، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ کی حمد کریں. پتا پتا، بوٹا بوٹا، ہر چیز بول بول کے اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ مجھے کوئی ہے بنانے والا جس نے مجھے پیدا کیا اور میں اس کا شاہکار ہوں. آپ ادھر نظر ڈالیں، ادھر ڈالیں، کسی چیز پہ بھی نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو اللہ کی تعریفیں دکھیں گی. دنیا میں کسی کی بھی کوئی تعریف ہو رہی ہے، اگر کوئی کسی کی بھی تعریف کر رہا ہے، تو اصل میں وہ الحمید کی تعریف ہے. کیونکہ دنیا میں کسی کی کوئی اپنی چیز ہے ہی نہیں، اپنی اصل کے اعتبار سے تو ہر چیز بالکل الگ سے ہے. تو آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھتے جائیں گے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ مجھے اپنے رب کی تعریفیں بیان کرنی ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس میں ہمیں کچھ بھی نئی بات نہیں لگے گی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہا میم دال سے ہے، حمد، حمد و تعریف کے لائق، اور اپنی ذات میں خود محمود، یعنی کوئی اس کی تعریف نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو، کوئی اس کی ذات کو نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی تعریفوں کی وجہ سے ریزلٹس چینج ہو جاتے، پرسیپشنز چینج ہو جاتے. لائک کا بٹن دبائیے، آپ دبائیں گے تو ہمیں اتنے لوگ جاننے لگ جائیں گے، اور اس طرح کی چیزیں آج کی سوشل میڈیا کی زبان میں کسی کے لیے بھی نئی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اوپر جتنا زیادہ آپ غور و فکر کرتے جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کتنا خوبصورت معاملہ کرنے والے ہیں. اور اپنی ذات میں جو خود محمود ہو، جس کو برواہ ہی نہیں، جس کی تعریف کوئی کر دے تو کرنے والے کا فائدہ، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس نہ کرنے والے کا نقصان ہے، لیکن مالک کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ اس کے بارے میں کچھ کریں نہ کریں، اس کو اچھا کہیں، اس کے بارے میں کوئی تعریف کریں نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو. تو لہٰذا ہم سب اس نام کو پڑھتے سنتے وقت کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. اور الحمید سے مراد وہ ذات کہ جس نے مخلوق پر اپنی تعریف کو واجب قرار دیا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے مخلوق پر خوب انعامات کر رکھے ہیں اور احسان کا معاملہ فرمایا. سوچیے، یہ واجب ہے آپ پہ. کہتے ہیں کہ نتھنگ از فری ان دا ورلڈ، ایون جس کو لوگ کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری، وہ بھی غلط ہی ہوتا ہے. ایک جھوٹا دلاسا تو ہو سکتا ہے لیکن اصل نہیں ہے. دنیا میں کوئی چیز جب فری نہیں آتی، تو جب اللہ نے آپ کو مجھے پہلے تو زندگی دی، سانس دیے، फिर अल्लाह ने आपको मुझे कुछ नज़र आने वाली और बहुत कुछ ना नज़र आने वाली नेमतें दी, जिसमें हमारा जिस्म, हमारी ऑक्सीजन, हमारे अंदर बाहर का जब निज़ाम चला दिया, तो जब ये सब कुछ उस मालिक ने दिया और फिर उसके बदले में आप और मैं उसको क्या दें, उसको हम्द दीजिए। ये वाजिब है आप पे, बिल है आपके नाम पे। आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें और उसका बिल ना दें तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं। जिस दुनिया में आप बैठे हैं, लोग तो शुक्र करते हैं कि ना कोई वक्त पे करे, ताकि बाद में हम एक्स्ट्रा चार्ज करके इनको भेजें। तो अल्लाह सुबहाना तआला ने आपको मुझे कोई इस तरह की पाबंदी में नहीं रखा कि तुम शुक्र ना करो तो तुम्हारी ऑक्सीजन घटने लगे, और तुमने बिल पे नहीं किया तो अब पानी नहीं तुम्हारे पास आ रहा और तुम्हारा जिस्म कमज़ोर होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी गलती लगी थी मक्का वालों को। हमने देखा था अल्लाह राब सूरत की इनडेप्थ स्टडी में कि तीन वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह ये होती है जिसकी वजह से लोग नहीं मानते वक्त के नबी को, और वो क्या कि अगर ये सच्चा नबी है तो फिर इसके ऊपर तो फरिश्ते उतरे और इन लोगों के ऊपर तो सोना चांदी बरसे। हालांकि वो देखते थे कि अल्लाह की तरफ आने वाले और नबी का साथ देने वाले के जो अव्वल दौर के लोग हैं, वो बड़े गरीब, कसम बुरसी का शिकार होते थे। इससे गलत फहमी होती थी और अपने बारे में वो कहते थे, देखो अल्लाह राजी है, अल्लाह खुश है, तभी तो हमें ये दे रहा है और ये नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ें सुनते और पढ़ते वक्त आपको मुझे महसूस करना है, क्या मैंने अल्लाह का ये हक दे दिया, और एहसान का मामला जो अल्लाह ने मेरे साथ किया, क्या मैंने इसको किया। फिर आगे कि तो इसकी नाफरमानी से बचते हुए इसकी तारीफ में मुस्तकिल लगे रहो, इसकी फरमाबरदारी की जानिब दौड़ कर चलो, यानी जिसका हुक्म दिया गया है इसके पूरा करने की फिक्र करो, और जिस चीज़ से मना किया गया है इससे रुक जाओ। अल्लाह अकबर। इस एक तारीफ और इस एक बात पे गौर करें ना तो हमें गम लग जाए। पता नहीं कयामत के दिन कितनी पेंडिंग पेमेंट्स होंगी, पता नहीं उस दिन हमारे साथ होना क्या है। आप देखिए कि जब आप इस दुनिया के निज़ाम को समझ जाते हैं ना, तो फिर आपको आखिरत का निज़ाम भी बहुत अच्छी तरह समझ आता है। दुनिया में अगर कहीं खामोशी हो तो आप कहते हैं अब कोई बाद में कोई बहुत बड़ी आफत आएगी, कोई बहुत बड़ा मामला हमारे सामने खुलेगा। इसी तरह से इस दुनिया में अगर अल्लाह सुबहान तआला हम्द ना करने, उसकी नेमतों का बेल अदा ना करने, और इसी तरह से उसकी मर्जी का ना जीने के बावजूद हमको नवाजता जा रहा है, तो समझ लीजिए कि ये बड़ी सख्त किस्म की पेमेंट जमा हो रही है। इंसान बड़ा गाफिल है, उसको सिर्फ चीखने वाले, शोर मचाकर अपने हक लेने वाले, और इसी तरह से दुनिया में कुछ चीज़ों की बदनामी के डर की वजह से सीधा होना आता है। शरीफ़ नफ्स, खामोश, आपसे कुछ ना कहने वाले, आपसे इज्जत से पेश आने वाले, धीमी आवाज़ में, नरम आवाज़ में आपसे बात करने वाले को लोग कुछ समझते नहीं। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अल्लाह ताला ने ये असूल नहीं रखा। सर पे थप्पड़ पड़ता हमारे अगर हम सर में कोई गलत बात सोचते, दिमाग में, दिल में एकदम हूक उठती है अगर दिल में कोई गंदी बात सोच ली, आंख गलत देखती है एकदम आंख में से पानी निकलता, कान भी इसी तरह का कोई रवैया अख्तियार करते तो फिर हम जानते हम कैसे सीधे होते हैं। फिर कहाँ कोई दुनिया में कोई गलत काम कर सकता था किसी के कहने या किसी की खुशी या किसी की नाखुशी पे। अल्लाह ने हमें सहूलतें दी हुई हैं, आसाइशें दी हुई हैं कि तुम साथ ही साथ मेरी तारीफें करते जाओ और फिर जो मैंने कहा है वो करो। आप देख रहे हैं ना कि तारीफ भी है, नाफरमानी से बचना भी है, और फरमाबरदारी की तरफ भागना भी है। ये तीन काम कर लीजिए, बिल पे हो गया, आगे जाएंगे तो पेंडिंग पेमेंटें और उस पर फिर आगे मज़ीद सज़ाएं नहीं होंगी। वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के अलहमीद होने को समझ कर अपने गुनगाने, लोगों के गुनगाने, चीज़ों के गुनगाने की बजाय सिर्फ अलहमीद की तारीफें करते हैं। आप देखिए कि किसी को चाय का कप पेश किया जाए, अब किसी ने बनाई, किसी ने दूध खरीदा और 10 चीज़ें करके आपके सामने चाय का कप लाए, और आप बेजान चीज़ को पूजें, कप का शुक्रिया, चम्मच का शुक्रिया, पत्ती का शुक्रिया, दूध का शुक्रिया, और जिसने भेजी, जिसने बनाई, जिसने रखी, जिसने पिलाई, उसका तस्करा भी नहीं है, तो लोग आपको क्या कहेंगे? आप खुद जानते हैं, लोग कहेंगे बावला है, ना शुक्रा है, निकम्मा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला की जब हम्द की जाती है ना, तो कह लीजिए कि वो चार मुख्तलिफ दर्जों में अलहमीद है। मुराद ये होता है ना कि किसी की तारीफ कब की जाए, किस बात पे करूं। आमतौर पे देखिए ना, तो हम दो तरह से किसी की तारीफ करते हैं। फिर मैं आपको ये चार कवानीन भी समझाती हूँ। बस आप अपनी ज़िंदगी में देख लीजिए, आप किस चीज़ की तारीफ करते हैं जो खूबसूरत हो। आपको फ़ायदा दे ना दे कोई फ़र्क नहीं, बस फूल खूबसूरत है, पत्ते खूबसूरत है, न्याग्रा फॉल खूबसूरत है, आप नेचर को देखते हैं खूबसूरत है, चीज़ें खूबसूरत होती हैं। कोई सूट बड़ा खूबसूरत है, आप कहते क्या खूबसूरत जोड़ा है, क्या खूबसूरत जूता है। ठीक है, इस तरह कोई इंसान, कोई सिस्टर है, कोई लड़की है, कोई आप देखते हैं, आप कहते हैं बड़े प्यारे फीचर्स हैं। अब वो उसका हुसन है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा, आप तारीफ करते हैं उसकी जो आपको फ़ायदा दे। कोई आपको खाना बना के दे, कोई आपको कपड़ा सी दे, कोई आपके लिए कोई और जिस्मानी तौर पे आपकी हेल्प कर दे, कोई आपको दबा दे, कोई आपका कमरा साफ कर दे। तो आप मुझे बताइए कि पहली सूरत में जो किसी की तारीफ की गई वो सिर्फ चीज़ की वजह से थी, दैट्स इट। दूसरी वो थी जिसमें फ़ायदों के हसूल के लिए लिखिए। अल्लाह सुबहाना ताला में ये दोनों चीज़ें किस दर्जे पे हैं? पहली चीज़ देखिए खूबसूरती, उसका हुसन, इसको तो हम देख ही नहीं सकते क्योंकि वहुआ युद्रिकुल अबसार, हम नहीं देख सकते। ला तुद्रिकुल अबसार वहुआ युद्रिकुल अबसार, राइट? तो जिस चीज़ को देखा नहीं, आप उसकी कितनी को तारीफें करेंगे। देखिए ना, आप नियाग्रा फॉल नहीं देखे, सिर्फ तस्वीरें देखते, आप कहते सुबहान अल्लाह, वाह जी बहुत अच्छी, बड़ी खूबसूरत, कोई भी और मिसाल ले लीजिए। लेकिन जब तक आप वहां जाकर नहीं देखते वो क्या है, तो आपको उसका असल हुसन नहीं दिखता ना। इसी तरह तस्वीरों में भी ना देखे, सिर्फ नाम सुना हो कि एक नियाग्रा फॉल है और एक ऐसे है और फुला है और फुला है, आप नहीं गए ना देखा, कितनी को तारीफ करेंगे आप। मैं आपको ये एक्सट्रैक्ट देने लगी हूँ जो सारी दुआओं में आपको मिलेगा। अल्लाह के नबी कहा करते थे ला उहसी सनान, अल्लाह के नबी फरमाते थे कि अल्लाह हम तेरी सनाओं का हक अदा ही नहीं कर सकते। तो पहली मजबूरी हमारी क्या, हमने उसको देखा ही नहीं है। जिसको देखा नहीं है उसकी तारीफ कैसे करें? जानते भी बहुत थोड़ा से, बस सुनी सुनाई बातें हैं हमारी, उसके साथ और तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए, फ़ायदा। अल्लाह ताला हमें जितने फ़ायदे दे रहे हैं, बिलीव मी, उसका शायद 1/10 क्या 0.11% भी हमें नहीं पता। हम चार छह चीज़ों के नाम लेके कहते हैं हाँ अल्लाह ने ज़िंदगी दी, ये दिया, वो दिया, ये कर दिया, उस तरह हुआ, किया, दैट्स इट, ख़त्म, कहानी ख़त्म। उसके बाद क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। आप कहेंगे हाय ये कैसे होगा? ये सब चीज़ें अपने आप को समझाने के लिए हम सबको ज़रूरी है कि उसकी मार्फत लें। तो जब दोनों चीज़ों को सामने रखते हैं, अल्लाह सुबहाना ताला के साथ जो मामला आपका है, मेरा है जो मामला, जब हम उसको सामने रखते हैं, तो फिर हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आती है कि ना तो हम उसके वो पूरी तरह देख सके और ना पूरी तरह जान सके। क्यों मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को देखना चाहते थे? क्यों अल्लामा इकबाल के अशआर है कि कभी मजाज से निकल कर हकीकत के पर्दे में नज़र तो आ, कि हज़ारों सजदे मचल रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। और वो क्या कैफियत होगी जब क़यामत के दिन अल्लाह सुबहान तआला नज़ूल फरमाएंगे, तो उसको देखते ही लोग झुकने लगेंगे, लोगों की अपनी कैफियत बदल जाएगी। तो वो तो फिर जब होगा सो होगा ना, वो तो तब की बातें हैं। और इसी तरह अल्लाह ने जो फ़ायदे दिए हैं, जिन थोड़े से फ़ायदों का हमें इदराक भी है, उसके साथ हम उसकी सनाओं का और उसकी तारीफ़ों का हक अदा नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता हमसे अदा। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि हम उसको पूरा जानते ही नहीं हैं, पूरे तरीके से हम जानते ही नहीं हैं। तो लिहाजा सारी बात का खुलासा फिर क्या निकला कि अल्लाह ताला की तारीफ और उसकी हम का हक अदा ही नहीं हो सकता। अब अल्लाह ताला चार दर्जों में अलहमीद है, समझिएगा, अलहमीद अल्लाह ताला चार दर्जों में है। नंबर एक, अपने अफाल में, जो काम वो करता है। आपने कभी देखा होगा कोई काम करता है बहुत एक्सीलेंसी पे, कोई करता है बिल्कुल बेकारियत पे। आप देखिए कि इस वक्त आप और मैं पूरी दुनिया को देखें, अपनी ज़िंदगी में, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ हर चीज़ अपनी वसअतों से बाहर निकलती हुई दिख रही है, और आप और मैं खुद देख सकते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह सुबहान तआला के कामों को देखते हैं, और मैं तो फिर कामों को देखूँ ना, तो मेरे जहन में तो सबसे पहले इस चीज़ को देखती हूँ कि अल्लाह सुबहान तआला की ज़ात बच्चे को कैसे दुनिया में तख्लीक लाते हैं। एक वीडियो देखते हैं ज़रा से अल्लाह ताला की तारीफ़ों को देखने की खातिर कि वो कैसी खूबसूरत हस्ती है, क्या उसका मामला है, कैसे हम उसके साथ अपने मामले को दुरुस्त कर सकते हैं और किस तरीके से آپ اور میں اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی الحمید ہے. آپ کو مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو غور کرتے وقت اس کے کاموں کو دیکھنا ہے. ایک چھوٹے سے انار کو دیکھیے, کام ہے نا اللہ کا, اس نے کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا. آپ جتنا زیادہ ان چیزوں پہ غور کرتے جائیں گے نا, آپ کو خود بخود یقین آ جائے گا کہ آپ کا مالک ہے جو یہ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ الحمید ہے اپنی تخلیق کے معاملے میں, اپنی تخلیق کے معاملے میں. آپ سوچیے ذرا, آپ تخلیقات دیکھیے, اور جب ہم اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہیں تو سٹنگ, بالکل مائنڈ بلوئنگ. ہم اس طریقے سے سن ہو جاتے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کیسے الحمید ہے. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قوانین میں, جو اس نے زندگی گزارنے کے قانون بنائے, اس نے ہمیں جو راستے دکھائے, جو چیزیں اس نے ہمیں بتائیں وہ کیا ہیں, وہ ضابطے جو اس نے مقرر کیے. تو لوگوں کو شوق ہے نا کچھ نیا کام کرنے کا, میری مرضی اور میری, اللہ کی نہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں کہتے ہیں حل ترا من فطور, کیا تم نے کبھی اس آسمان میں کوئی شگاف دیکھا ہے؟ تو جب آسمان میں شگاف نہیں ہے تو اس کے بنائے ہوئے نظام حیات میں, قوانین میں کوئی شگاف نہیں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسری چیز جس میں اللہ تعالیٰ الحمید ہے وہ اس کے قوانین ہیں. سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, دریا, ہر چیز اس کے قوانین پہ چل رہے ہیں. فزکس پوری کی پوری آپ دیکھ لیں, ایکویشن سے بھری پڑی ہے. پوری اسٹرانومی دیکھیے, سورج چاند دیکھیے, اور ایک چھوٹا سا قلم اس کو اس کی نوک کے اوپر آپ سیدھا کھڑا نہیں کر سکتے. ہاتھ سیدھا بھی کر کے, ہاتھ پہ نہیں کھڑا ہوتا, آپ ٹیبل پہ اپنے قلم کو اس کی نوک کے ساتھ سیدھا کھڑا کر کے دیکھیں, نہیں کھڑا ہوگا. جب وہاں نہیں کھڑا ہوگا تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی یہ کائنات, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے کیسے کھڑے ہیں. ہلکا سا اپنے ایکسل سے ادھر سے ادھر ہو جائیں, اللہ اکبر کبیرہ, تو پوری کائنات بگڑ جائے. کچھ بھی تو نہیں ہے, کچھ دکھے گا بھی نہیں ہمیں وہاں. تو اللہ تعالیٰ اپنے ان سارے معاملات میں الحمید ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی وہ الحمید ہے, تو پھر آپ اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور ایسے گنگاتے ہیں, ایسے گنگاتے ہیں کہ آپ کی زبان نہیں تھکتی, آپ کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا. انک حمید مجید, ہر روز درود شریف میں کئی بار آپ ان چیزوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں, کیونکہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو آپ کو مجھے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو محسوس کیجئے, ہر چیز کو اس نے کیسا خوبصورت طریقے سے رکھا. انشاءاللہ اس پہ ہم دیکھیں گے, لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین نے کیا کہا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو کیسے سمجھا. تو اس میں سب سے پہلے امام حلیمی کا قول ہے, کہتے ہیں کہ الحمید جل جلالہ وہ ذات ہے جو تعریف کی مستحق ہے, اسی نے ساری انسانیت کو وجود بخشا, پھر دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں, ایک ہے زندگی اور دوسری ہے عقل, اور اسی پر اکتفا نہیں کیا, یعنی بس یہی کفایت نہیں کیا کہ بس اسی پہ رک گئے, بلکہ اس کے احسانات اور انعامات مسلسل جاری ہیں اور اس قدر ہیں کہ اس کا شمار کرنا ممکن نہیں. اگر کوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے, سوچیے, تو شمار کر ہی نہیں سکتا, ہے ہی نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, پوری کوشش کر لو, گنتی ختم ہو جائے گی, پہاڑے بڑھ لو, سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن تم رب کی تعریفیں نہیں کر سکتے. کیسے, ذرا سا اس کو جذب کیجیے. الحمیدو هو المستحق, کیا کہ وہ مستحق ہے اس بات کا, لِأَن يُحْمَدَ کہ اس کی تعریف کی جائے, لِأَنَّهُ کیونکہ وہ, جَلَّ ثَنَاؤُهُ اس کی ثنا بڑی جلال والی ہے, بَدَا فَأَوْجَدَ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ النِّعْمَتَيْنِ الْجَلِيلَتَيْنِ کون سی, الْحَيَاةِ وَالْعَقْلِ. آپ اردو کو دیکھ کر یہ تعریف سنیں, آپ کو آدھی عربی ویسے ہی سمجھ آ جائے گی. وَوَلَا بَيْنَ مَنْهِهِ, یعنی یہی نہیں کہ بس اسی پہ رہے, وَتَابَ عَلَاؤُهُ وَمِنَ نُهُ حَتَّى فَاتَتِ الْعُدَّةُ وَإِنِ اسْتُفْرِغَ فِيهَا الْجُهْدُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ سِوَاهُ بَل لَّهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ لَا لِغَيْرِهِ كَمَا أَنَّ الْمَنَّ مِنْهُ لا من غیرہ. है कोई उस जैसा? कोई नहीं हो सकता। आप जरा इस खिजां के मंजर को देखिए जो आपके सामने है। ये दरख्तों को पीले रंग के कपड़े पहनाने वाली हस्ती कौन है? और ये मंजर आपको अक्सर दिखता है अगर आप ऑटम के सीजन में बाहर निकलें, खासतौर पर यूरोप में या फिर किसी भी जगह के ऐसे इलाके में कि जहाँ वेदर चेंजेस बड़ी क्लियरली दिखाई जाती है ना, दिखती हैं। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को देखेंगे इस नज़र से कि ये आपके रब ने बनाई हैं, ये आपके रब की क्रिएशन है, ये उसका मुकाम है, ये उसका काम है, उतना ज़्यादा आप महसूस करेंगे अलहमीद को। सच बताइए, ऐसी जगह पे जाकर क्या दिल चाहता है? अल्लाह ने बहुत मौका दिया इन चीज़ों को देखने का, सुनने का, पढ़ने का। ऐसे लगता है कि दिल सजदों में चला जाता है, आंखें बहने लग जाती हैं। और इन जगहों पे जाके अगर लोग हल्ला गुल्ला करें और फिल्में, गाने, ड्रामे और बेकारियात में वक्त और वहाँ बैठ कर गिप्ते करें, एक दूसरे का यानी अजीबो गरीब मामला कर दें, तो ये नाशुक्री है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो कायनात बोल बोल कर आपको मुझे एहसास दिला रही है कि हमें बनाने वाली हस्ती है जो बहुत ही बड़ी हस्ती है, जिसको काम करना आता है, तुम्हें नहीं आता, उसको आता है। और बात यह है कि जो रब्बुल इज़्ज़त ऐसी करीम ज़ात हो कि जिसकी नेमतों को गिना ही ना जा सकता हो, हर घड़ी हर हर इंसान पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों नेमतों की बारिश हो रही है। बताइए फिर उसके सिवा तारीफ का और कौन मुस्तहिक होगा? किसकी तारीफें की जाए? तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, यानी अल्लाह ताला के गैर के लिए नहीं। जिस तरह के तमाम एहसानात अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हैं, गैर की तरफ से कोई एक एहसान हम पे नहीं, उसने हमें किसी पे नहीं डाला कि खामखा कोई और हमारे काम करे और हम उसके बोझ में दबते जाएं। देखिए, अपनी माँ से बच्चा कुछ भी करा ले, अपना बाप जो मर्जी दे दे, किसी दूसरे का तो एक रुपया भी चुभता है बंदे को। जरा सी कोई खिदमत कर दे, आप शर्मिंदा होते, नहीं 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 मैं खुद ही कर लूँगी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा कर लूँगी, वो कर लूँगी। लेकिन बात यही है कि आप मैं इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला वो हस्ती है कि जब आपको मुझे बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों की तरफ ले जाए, तो फिर हमें इस पर गौर भी करना चाहिए। इसी तरह बिकर बिन अब्दुल्ला अल मुज़नी कहते हैं, जब भी कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, इसके लिए नेमत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह, यानी आप कहते जाइए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और नेमतें आपके हाथ में आती जाएंगी। और ये चीज़ तो आप अल्हम्दुलिल्लाह से लेके पूरे कुरान में पढ़ते रहते हैं कि नेमतों को कैद करो। इमाम इब्न कय्यम कहा करते थे, कय्यदु, नेमतों को कैद कर लो शुक्र के साथ, क्योंकि मोहर लग जाती है। अल्लाह ताला सूरत इब्राहिम में क्या फरमाते हैं, वाला इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, तुम ज्यादा शुक्र करो, मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। तो अल्लाह ताला की हस्ती है। इसी तरह इमाम इब्न कसीर रहमहुल्ला फरमाते हैं, अलहमीद का मानी यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने तमाम कामों में और तमाम बातों में और अपनी शरीयत और तकदीर में लायक़ तारीफ़ व हम्द है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं और ना कोई परवरदिगार है, यानी हर हर काम इसका काबिले तारीफ़ है, इसका हर हर कौल लायक़ सताइश है। अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हर हर हुक्म हिकमतों पर मबनी है, और अल्लाह का हर हर फैसला अटल और इंसाफ वाला है। हर हर मखलूक को इसने ठीक अंदाजे से पैदा किया और मुकर्रा वक्त पर इसको अपने फैसले के मुवाफिक मौत दी। ये सब काबिले तारीफ उमूर हैं। सुबहान अल्लाह, वहुवल हमीदु आई अल महमूद फी जमी अफालिही व अकवालिही व शरईही व कदरिही ला इलाहा इल्ला हुआ। और आखिर में तवला रब्ब सिवा, उसके सिवा कोई रब ही नहीं है। तो हमें अल्लाह ताला अपना क़ुर्ब अता फरमा दे, हम उसके साथ अपने इस मामले को खूबसूरत से खूबसूरत जोड़ते रहें। जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करते जाएंगे ना, आपको महसूस होगा कि अल्लाह ताला ही अलहमीद है। फिर इसी तरह इमाम सादी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात, अपने असमा और अपने तमाम अफ़ाल में लायक हमदो तारीफ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका सब नामों से अच्छे हैं, और इसी तरह अल हमीद की सिफात सब की सब कामिल और खूब तर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम काम एहसान और इंसाफ पर मबनी हैं। अल्लाह ताला हमें इस नाम का एहसा करने की तौफीक दे। इब्ने क़य्यिम रहमहुल्ला अपने क़सीदे नूनिया में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अल हमीद हैं, यानी तमाम तारीफें उसी की तरफ रजू होकर जाती हैं, इसलिए कि जितने भी महामिद और महासिन बयान हुए हैं या जो गुज़श्ता ज़मानों में बयान हो चुके हैं वो सब, अब देखिए लफ्ज़ देखिए, महामिद क्या होगा हमद से और महासिन क्या होंगे, यानी वो चीज़ें जो काबिले तारीफ़ है। ये दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें खूबसूरतियाँ और हुसन को लिए हुए थी, ये वजूद कायनात को भर दें हत्ता कि इनका शुमार और अंदाज़ा भी मुमकिन न रहे, तब भी अल्लाह ताला ही इन तमाम तारीफ़ात के लायक हैं, और इन्हीं के लायक ये तारीफ़ात हैं। पाक है वो ज़ात और इसी के लिए तमाम तारीफ़ात हैं, क्योंकि तमाम तारीफ़ात एहसान करने वाले के लिए हुआ करती हैं। वहुवल हमीदु फकुल्लु हमदिन बाकिन औकान मफरूदन मदल अजमान। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तौफीक दी कि वह अल हमीद की तारीफ़ें करें। खुलासा क्या बना, दो जुमले में बोल दूँ अभी तक की बात को। अल हमीद वो ज़ात है जिसकी ऐसी सिफात और असबाब हमद हैं जिस पर दलालत करते हैं कि वो महमूद हैं, और अगर कोई इसकी तारीफ़ ना भी करे तो भी वो अपनी ज़ात में हमीद है। और महमूद वो ज़ात है जिसके साथ तारीफ़ करने वालों की तारीफ़ का ताल्लुक हो, और यही फ़र्क मजीद ममज्जद कबीर मुकब्बिर अजीम और मुअज़्ज़म में है। कुछ वीडियोस देखते हैं हम अल्लाह ताला की मखलूकात, उसके अफ़ाल और उसकी बनाई हुई कायनात में फल फूल पौधे और उसकी मखलूकात को देखेंगे, फिर चलेंगे आगे कि कुरान पाक में इसके बारे में क्या है। आप ज़रा इन अंगूर के खोशों को देखिए, इनका साइज़ देखिए। अंगूर आपने बहुत दफ़ा लगे देखे होंगे, लेकिन इस तरह नहीं। इन टमाटरों को तो देखिए, कभी आप इसका साइज़, इसकी हमवारियत देखें, इनका साइज़ देखिए, इनका जूस देखिए, पल्प देखिए। ये देखिए शहतूत, हम अपने मुल्कों में जो शहतूत देखते हैं अमूमन वो एक ही रंग के होते हैं, इसमें कितने शेड हैं, बेरीज हैं ये। और ये पहाड़, दिल में अब ख्वाहिश आने लगी है कि अल्लाह इन जगहों पे लेके जाए। ये मोस्टली जितनी भी आपको अक्सर चीज़ें दिखती हैं ना, ये चाइना के इर्द गिर्द की हैं, हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं। दरख्तों की तरह के पहाड़ हैं, पतले पतले लंबे और खड़े हैं। ये बर्ड देख लीजिए, इसकी चोंच का रंग देखिए, इसकी टेल का कलर देखिए, क्या तारीफ़ें मुँह से निकलती हैं। क्यों जन्नतियों की ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह सांस की तरह निकलेगा। ये सूरज की शुआएं देखिए, ये नीचे सब्ज़ा देखिए, बीच में चमकते बादल देखिए, ये कौन है। ये चीज़ें बोल के बता रही हैं कि आप इसको देखें। और आप ज़रा ये आबशार को जमा हुआ देखें, कैसे लगता है स्टिक्स हैं, ऊपर परिंदों को उड़ता देखिए, इतने ऊंचे पहाड़ बीच में परिंदे, ये रियलिटी है, जन्नत कैसी होगी। जब तक हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करेंगे हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं बनेगा। अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा दुनिया में, अभी मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारा हिस्सा तो डिस्कवर ही नहीं हुआ। हम इसी को देख के पागल होते हैं, ये देखिए आबशार, इसके रंग देखिए, क्या लग नहीं रहा कि आपको ऊपर से कोई ऐसे सोना आ रहा है। और ये देखिए पत्ता, पत्ते के ऊपर बर्फ़ जमी, पूरा बर्फ़ का पत्ता, आपकी क्रिस्टल क्या करेगी जो ये करता है। देखिए इतनी नज़ाकत, इसको देख के तो मुझे लतीफ़ लग रहा। अलहमीद बोलिए, अलहमदिल्ला रबी आलमीन, सुबहान अल्लाह कहिए। ये देखिए चाइना के इलाके में, आप देखिए कि इसमें आपको भी ये दिखेगी दीवार भी ऊपर, कैसे ऊपर दौड़ती ये मखलूकात, ये पानी, ये नदियाँ, ये बल खाती सड़कें, ये पहाड़, ये दरख्त, ये क्या है, हम क्यों गौर नहीं करते। लोग कहते हैं कि लोग कुरान नहीं पढ़ते, मैं कहती हूँ लोग कायनात भी नहीं पढ़ते। अक्सर लोग कहते हैं कुरान पढ़ते हैं ना कोई नहीं समझते, तो मैं सोचती हूँ कि कायनात को भी कोई नहीं समझते। ये देखिए मछली कैसी चमक है इसकी स्किन पे, इसका मुंह खोलकर देखिए, ये समंदरी मखलूक है कोई, क्या इसका हक अदा कर सकता है कोई। और मुझे तो ऐसे लगता है अल्लाह कहता है इंसान तू सोच तो सही, तेरी सोच के अंदर भी जो नहीं आता मैं वो भी बना दूँ। और अभी हमने समंदरों की तहें खोल के देखी नहीं है, पहाड़ों की तहों में तभी कभी गए नहीं, ये आप इसके ब्रश को देख लीजिए। तो जब वो हस्ती इतना कुछ करके दुनिया में दिखाए और अलहमीद कहलाए, तो उसकी जन्नत कैसी होगी। उस कायनात पे गौर करके देखिए। आप और मैं इन चीज़ों को देखा करें, अपने अंदर नज़ाकत लाइए, नरमी लाइए, बच्चों के साथ बैठ कर देखिए, मियाँ के साथ बैठ कर देखिए। हर वक्त मुसीबतें क्यों हैं ज़िंदगी में, हर वक्त खपाइयाँ क्यों हैं आपको, हर वक्त रोना धोना क्यों पड़ा, ये नहीं हुआ तो वो नहीं किया तो ये नहीं हुआ, पीछे डाल दो इसको, मिट्टी डाल दो इन चीज़ों पे, आओ बैठो कायनात को देख, कभी गर्मी को एंजॉय करें, कभी सर्दी को करें, कभी पहाड़ों में जाएं, कभी दरियाओं के किनारों पे, फूलों को देखें, पत्तों को देखें। और हम वहाँ चले भी जाएं तो बिरयानी के पतीले उठा उठा के हफ रहे होते हैं कि अब खाना खा लें जल्दी से, बर्तन उठाए हुए, अच्छी बात है। लेकिन अलहमीद के इस कारनामे को जो इस कायनात में बिखरा दिख रहा है, ओवरलुक करना ना शुक्री है, ना समझी है, ना फरमानी है, हम इसके ऊपर गौर नहीं करते। तो लिहाजा